हम अपनी पहचान कैसे बनाते हैं? मतलब अगर कोई हमसे पूछे आप कौन हैं, तो हमारा पहला जवाब क्या होता है?
आमतौर पर नाम या शायद पेशा।
हाँ, या हम कहाँ से हैं ये बताते हैं। लेकिन क्या ये लेबल ही हमारी पूरी पहचान है? आज हम इसी सवाल की गहराइयों में उतरने वाले हैं।
और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है।
बिल्कुल, हमारे पास गायत्री महाविज्ञान भाग 3 मैं क्या हूँ के कुछ अंश हैं जो चेतना के 5 अलग अलग स्तरों की बात करते हैं।
हाँ, और ये स्रोत हमारी स्व की भावना को, मतलब हमारी पहचान को, एक नक्शे की तरह दिखाता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है।
नहीं, ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है।
एकदम।
जिससे हम समझ सकते हैं कि हम खुद को और इस दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं।
तो आज हमारी चर्चा का मिशन है इन 5 स्तरों को, या कहें कि 5 कोशों को समझना,
और ये देखना है कि ये प्राचीन ज्ञान आज के जीवन में कितना प्रासंगिक है।
ये एक यात्रा है, सबसे बाहरी स्थूल पहचान से शुरू होकर चेतना के सबसे गहरे केंद्र तक।
चलिए तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी स्तर से, अन्नमय कोश। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अन्न मतलब भोजन।
हाँ, तो ये पूरी तरह से हमारे स्थूल शरीर से जुड़ा है। ये पहला और सबसे बाहरी आवरण है।
इस स्तर पर व्यक्ति की मैं की भावना उसके शरीर पर ही टिकी होती है।
पूरी तरह से पहचान का आधार होता है, जैसे जाति, रंग, रूप, क्षेत्र,
भाषा, कुल या लिंग, ये सब।
हाँ, और सारी तुलना और विश्लेषण भी इसी शारीरिक भेद पर होता है।
कोई मोटा है, कोई पतला, कोई पहलवान, कोई कमजोर,
काला गोरा।
बिल्कुल।
यहाँ तक कि मनुष्य और पशु का भेद भी इसी स्तर पर होता है।
यानी इस लेवल पर दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से हार्डवेयर पर टिका है। सॉफ्टवेयर की कोई बात ही नहीं हो रही।
सही कहा।
मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब शरीर की विशेषताओं से मिलता है। जैसे कोई कहेगा मैं एक भारतीय हूँ या मैं एक पुरुष हूँ।
और मजे की बात ये है कि ये सारी पहचानें हमें बिना किसी मेहनत के मिली हैं।
हाँ, हमने इन्हें चुना तो नहीं है।
बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत इसे तम गुण से जोड़ता है। तम का मतलब है जड़ता या अंधकार। चेतना यहाँ अपने सबसे स्थूल रूप में है।
तम गुण मतलब एक तरह का ठहराव, जैसे कोई गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है, वो मौजूद तो है लेकिन कहीं जा नहीं रही।
क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। चेतना यहाँ बस अपने होने के सबसे स्थूल रूप में स्थिर है। कोई विकास नहीं, कोई गति नहीं।
और सारे बड़े बड़े सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष भी तो इसी शारीरिक भेदभाव पर आधारित होते हैं।
अक्सर ये पहचान का सबसे सतही स्तर है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी स्तर पर, मतलब अनजाने में जीते हैं।
तो अगर पहली पहचान सिर्फ शरीर से है जो हमें जन्म से मिलती है, तो इसमें तो हमारा अपना कोई योगदान नहीं है।
नहीं है।
तो इंसान की कोशिश तो इससे आगे बढ़ने की होती होगी, हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत। क्या पहचान का अगला स्तर इससे जुड़ा है?
आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है। अगला स्तर है प्राणमय कोश।
प्राणमय कोश।
हाँ, यहाँ पहचान शरीर से ऊपर उठती है और व्यक्ति की प्रतिभा, उसके कौशल, उसके पास मौजूद धन और साधनों से जुड़ जाती है।
अच्छा, तो यहाँ मैं कौन हूँ का जवाब बदल जाता है?
बदल जाता है।
अब जवाब ये नहीं है कि मैं एक पुरुष हूँ, बल्कि ये है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, या मैं एक सफल व्यवसायी हूँ।
बिल्कुल।
आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो मुझे लगता है प्राणमय कोश हमारी पहचान का केंद्र बन गया है।
बहुत ही सटीक उदाहरण है।
हमारा इंस्टाग्राम बायो, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल, हमारी पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब इसी स्तर का खेल है ना?
हाँ, बिल्कुल। इस स्तर पर पहचान का आधार है कुशलता, पद, व्यवसाय, धन। इसी स्तर पर धनी, गरीब, मूर्ख, शूरवीर, लेखक, वक्ता जैसे भेद किए जाते हैं।
तो यहाँ मैं का भाव इस बात से जुड़ा है कि व्यक्ति क्या कर सकता है या उसके पास क्या है।
हाँ, सिर्फ होने की बात नहीं, बल्कि कुछ करने या कुछ हासिल करने की बात है।
और यहीं पर अहंकार का जन्म भी होता होगा, है ना? क्योंकि जब पहचान किसी उपलब्धि से जुड़ती है, तो उस उपलब्धि को बढ़ाने और बढ़ाने का दबाव भी आता है।
एकदम। अगर किसी की पहचान एक अमीर आदमी की है और उसका पैसा चला जाए,
तो उसे लगेगा कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया।
बिल्कुल। स्रोत इसे रज गुण से प्रभावित बताता है। रज का मतलब है सक्रियता, गति और महत्वाकांक्षा।
अच्छा।
तो अगर तम न्यूट्रल गियर था, तो रज मतलब गाड़ी टॉप गियर में दौड़ रही है।
हाँ, सही है।
इस स्तर और व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सांसारिक सफलता पाने में लगाता है और उसी से अपनी पहचान बनाता है।
तो ये अन्नमय कोश से एक कदम आगे तो है।
हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पहचान व्यक्ति के अपने कर्म और योग्यता पर आधारित है, लेकिन ये बहुत अस्थिर भी है
क्योंकि सफलता और असफलता के साथ पहचान भी डगमगाती रहती है।
सही बात।
तो अगर अन्मय कोष की पहचान हमें मिली है और प्राणमय कोष की पहचान हमने कमाई है, तो ये दोनों ही बाहरी चीजें हैं। शरीर भी बाहरी है और पद पैसा भी। क्या इसके बाद चेतना अंदर की तरफ मुड़ती है?
हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। तीसरा स्तर है मनोमय कोष।
मनोमय कोष,
यहाँ पहचान व्यक्ति के चरित्र, उसके स्वभाव और उसके सद्गुणों से बनती है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कोई कैसा दिखता है या उसके पास क्या है,
बल्कि ये है कि वो इंसान अंदर से कैसा है।
हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ बात उस व्यक्ति की नीयत और उसके संस्कारों पर आ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो आदमी अपनी जुबान का पक्का है,
या उस पर भरोसा नहीं कर सकते।
सही। यहाँ हम उसके बैंक बैलेंस या उसकी डिग्री की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदरूनी स्वभाव की बात कर रहे हैं।
मैं सही समझ रही हूँ?
आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। इस स्तर पर व्यक्ति की पहचान लोभी या दानी, चोर या उदार, विषयी या संयमी, इन सबसे होती है।
आस्तिक नास्तिक, स्वार्थी परमार्थी।
हाँ, यहाँ कर्तव्य और धर्म की मान्यताएं केंद्र में होती हैं। व्यक्ति के निर्णय उसके नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अच्छा और बुरा, नैतिक और अनैतिक, ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो सकते हैं।
गहरा सवाल है।
एक समाज में जो नैतिक है वो दूसरे में नहीं, तो इस स्तर पर पहचान कितनी स्थिर हो सकती है?
आप सही हैं, नैतिक नियम समाज और समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन मनोमय कोष का सार नियमों में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक क्षमता में है जो सही और गलत के बीच फर्क करने की कोशिश करती है।
अच्छा, मतलब अपने अंदर एक नैतिक कंपास विकसित करना।
बिल्कुल। श्रोत इसे सत्य गुण से जोड़ता है। सत्य का अर्थ है अच्छाई, संतुलन और पवित्रता।
तो अगर तम रुकी हुई गाड़ी है, रज तेज दौड़ती गाड़ी है, तो सत्य क्या हुआ? एक ऐसी गाड़ी जो सही गति से, सही दिशा में, बिना किसी झटके के आराम से चल रही है।
क्या खूब कहा, यही सत्य का भाव है, संतुलन और स्पष्टता। इस स्तर पर व्यक्ति आवेगों में बहने के बजाय सोच समझ कर निर्णय लेता है।
और यह शरीर भाव का उच्चतम स्तर है।
हाँ, जहाँ व्यक्ति अपने भौतिक और क्रियात्मक अस्तित्व से ऊपर उठकर अपने नैतिक अस्तित्व को महत्व देता है।
ठीक है, तो हमने शरीर, कर्म और चरित्र की बात कर ली, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोष। स्रोत कहता है कि ये तीनों शरीर भाव से जुड़े हैं, लेकिन अब हम एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं आत्मभाव की ओर। चौथा स्तर विज्ञानमय कोष, सुनने में ही बहुत भारी लगता है।
ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। विज्ञानमय कोष वो स्तर है जहाँ व्यक्ति शरीर, प्रतिभा और स्वभाव, इन तीनों से ऊपर उठ जाता है,
इन सब से परे।
हाँ, यहाँ ये एहसास होता है कि मैं इन सब अस्थाई चीजों से परे एक अविनाशी सत्ता हूँ। यहाँ मूल मान्यता होती है, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शाश्वत चेतना हूँ,
मैं ईश्वर का अंश हूँ।
बिल्कुल।
ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर है। यह ऐसा है जैसे कोई पूरी जिंदगी एक किरदार निभा रहा हो और अचानक उसे एहसास हो कि वो तो एक एक्टर है, किरदार नहीं।
हाँ हाँ, बिल्कुल सही।
अगर कोई इस भाव में जीने लगे तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होगा?
उसका नजरिया क्रांतिकारी रूप से बदल जाएगा। वो अलग अलग शरीरों में, अलग अलग रूपों में एक ही आत्मा या ईश्वरीय अंश को देखने लगता है।
तो उसके लिए कोई दूसरा पराया नहीं रहता?
नहीं रहता। अमीर गरीब, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, ये सारे भेद धुंधले पड़ने लगते हैं।
और जीवन का उद्देश्य?
जीवन का उद्देश्य बन जाता है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यानी सभी का हित हो, सभी सुखी रहें, हम सबके हैं और सब हमारे हैं, ये भावना प्रबल हो जाती है।
ये तो बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या ये असल में संभव है? इस स्तर पर पहुंचने का मतलब क्या व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है?
बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभाता है, पर बिना किसी आसक्ति के, बिना अटैचमेंट के।
अच्छा।
श्रोत में इस भाव को लेकर एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो इस कोष का सार है। मैं शरीर से, गुणों से, स्वभाव से ऊपर हूँ।
वाह।
मैं ईश्वर का राजकुमार, अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरा अस्त्र है, मन मेरा सेवक है, मैं इन सब का स्वामी आत्मा हूँ।
शरीर मेरा वाहन है, मन मेरा सेवक है, ये एक जबरदस्त पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हम तो अक्सर अपने मन और शरीर के गुलाम बन जाते हैं।
हाँ, यही होता है।
ये विचार हमें याद दिलाता है कि हम मालिक हैं। ये बोध व्यक्ति को हर तरह के छोटे मोटे बंधनों से मुक्त कर देता होगा।
एकदम। वो समझ जाता है कि वो इन उपकरणों का इस्तेमाल करने वाला है, न कि ये उपकरण उसकी पहचान है। ये आत्मसम्मान और आंतरिक स्वतंत्रता की अवस्था है।
और फिर बाहरी प्रशंसा या आलोचना से उतना फर्क नहीं पड़ता होगा।
नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पहचान अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, वो अपने केंद्र में स्थित हो जाता है।
तो शरीर भाव से आत्मभाव तक की ये यात्रा अपने आप में एक मंजिल जैसी लगती है, लेकिन अभी एक स्तर और बाकी है।
हाँ, अंतिम और सर्वोच्च स्तर,
आनंदमय कोश। ये परमात्म भाव है। ये अनुभव कैसा है?
ये परम आनंद और एकता की स्थिति है। अगर विज्ञानमय कोश में ये एहसास था कि मैं आत्मा हूं और दूसरों में भी वही आत्मा है, तो आनंदमय कोश में मैं और दूसरे का भेद ही पूरी तरह समाप्त हो जाता है।
पूरी तरह।
हाँ, यहां ये एहसास होता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, इसमें मौजूद हर कण एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। यहां कोई दूसरा है ही नहीं जिससे भेद किया जाए।
श्रोत में इसके लिए एक बहुत सुंदर पंक्ति है, सिया राम में सब जग जानी। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है?
इसका व्यवहारिक अर्थ है पूरे संसार को एक ही परमात्मा का स्वरूप मानना। जब ये बोध हो जाता है तो हर किसी के प्रति, हर जीव के प्रति एक अनंत आत्मीयता, प्रेम और कृतज्ञता का भाव जागृत होता है।
तो घृणा, द्वेष, भय, ये सब भावनाएं खत्म हो जाती होंगी?
खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जब सब कुछ अपना ही स्वरूप है तो किससे घृणा करें और किससे डरें?
तो क्या ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान दुनिया से कट जाता है, किसी गुफा में समाधि लगाकर बैठ जाता है?
नहीं नहीं, श्रोत इसे स्थित प्रज्ञा या समाधिस्थ स्थिति कहता है। इसे सहज समाधि भी कहते हैं।
सहज समाधि?
हाँ, जहां व्यक्ति दुनिया के सारे काम करते हुए भी भीतर से उस परम आनंद और एकता में स्थित रहता है। उसके काम में कुशलता होती है, लेकिन कर्ता होने का अहंकार नहीं होता।
वो हर पल को पूरी तरह जीता है।
हाँ, क्योंकि उसे भविष्य की चिंता या अतीत का बोझ नहीं होता। ये चेतना का शिखर है जहां जीवन एक उत्सव बन जाता है।
तो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की ये यात्रा, ये सिर्फ एक सैद्धांतिक वर्गीकरण नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो आत्म अन्वेषण का एक पूरा मार्ग है। ये दिखाता है कि हमारी पहचान एक पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी है।
बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि हमारी पहचान स्थिर नहीं है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। हम अपनी चेतना को स्थूल शारीरिक स्तर से उठाकर सार्वभौमिक एकता के अनुभव तक ले जा सकते हैं।
ये एक यात्रा है, शरीर भाव से आत्म भाव और फिर परमात्म भाव तक पहुंचने की।
हाँ, और हर स्तर अपने आप में एक दुनिया है, और हम चुन सकते हैं कि हमें किस स्तर पर जीना है।
यह हमें अपने और दूसरों के व्यवहार को समझने का एक फ्रेमवर्क भी देता है। जैसे जब हम किसी को जातीय रंग के आधार पर भेदभाव करते देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति अन्नमय कोश के स्तर पर जी रहा है।
सही बात है। और जब कोई अपने पद या धन का अहंकार करता है तो वो प्राणमय कोश में है।
और जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, तो शायद वो मनोमय कोश से भी आगे की यात्रा पर है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमें खुद को आंकने का एक जरिया देता है। दिन भर में हम इन सभी स्तरों के बीच घूमते रहते हैं।
हाँ, ये तो होता है। सुबह ट्रैफिक में कोई गाड़ी आगे निकाले तो हम अन्नमय कोश में आकर गुस्सा हो जाएं।
हाँ, और ऑफिस में प्रमोशन मिलने पर प्राणमय कोश में आकर खुश हों।
और शाम को किसी की मदद करके मनोमय कोश का संतोष अनुभव करें।
बिल्कुल, ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर, हमारी उपलब्धियों या हमारे स्वभाव से भी कहीं गहरी है।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि मैं कौन हूँ का कोई एक जवाब नहीं है।
नहीं है,
इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि हम चेतना के किस स्तर से ये सवाल पूछ रहे हैं।
एकदम, शरीर के स्तर पर हम अलग हैं, आत्मा के स्तर पर हम एक हैं,
और परमात्मा के स्तर पर हम सब कुछ हैं।
बिल्कुल सही। और ये स्रोत हमें सिर्फ समस्या नहीं दिखाता, बल्कि समाधान का रास्ता भी दिखाता है। ये हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करता है,
ताकि हम छोटी छोटी पहचानों के पिंजरे से निकलकर अपनी असली असीम पहचान को अनुभव कर सकें।
सही कहा।
तो इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ सकते हैं। अपने दैनिक जीवन के निर्णयों, अपनी बातचीत और अपने विचारों पर ध्यान दें। आज हम अपनी पहचान के किस स्तर पर सबसे ज्यादा जी रहे हैं, और क्या हम किसी गहरे स्तर का अनुभव करने की इच्छा रखते हैं?